लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है खजूर रविवार में संत पापा फ्रांसिस का प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने खजूर रविवार पर्व के अवसर पर अपने चिंतन में सिरेने सिमोन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवन के क्रूस को ढोने का आह्वान किया। अर्जेंटीनियाई कार्डिनल लियोनार्डो सैंडी ने खजूर रविवार का समारोही मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस के प्रवचन को घोषित किया। धन्य है वह राजा जो ईश्वर के नाम पर आता है। भीड़ यह घोषित करते हुए यरूशलेम में प्रवेश करती और यीशु का स्वागत करती है। मसीह पवित्र शहर के प्रवेश द्वार से होकर प्रवेश करते हैं जो उनके स्वागत हेतु खुला था, लेकिन कुछ दिन के बाद वे उसी द्वार से बाहर निकलेंगे शापित निंदित क्रूस को ढोते हुए। आज हमने भी यीशु का अनुसरण किया, पहले एक समारोही जुलूस में और उसके बाद दुख और उदासी में। जैसे हम इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हुए अपने को उनके दुखभोग मृत्यु और पुनरुत्थान की यादगारी मनाने हेतु तैयार करते हैं। संत पापा ने अपने प्रवचन में लिखा, सिपाहियों ने चेहरे और भीड़ में नारियों के आंसू भरे चेहरे को देखा। यहाँ हमारा ध्यान अनायास ही सुसमाचार में उस अज्ञात व्यक्ति सिरिनी के सिमोन की ओर खींच आता है जो अचानक प्रकट होते हैं। वह व्यक्ति सिपाहियों के द्वारा पकड़ा जाता है जो बाद में उसके कंधे पर क्रूस लाद देते हैं, जो उसे यीशु के पीछे क्रूस ढोने को कहते हैं। उस समय वह देहात की ओर से आ रहा होता है। तभी उसने अप्रत्याशित ढंग से खुद को एक नाटक में अपने को फंसता पाया जो उसे दुख से अभिभूत कर दिया, जैसे कि उसके कंधों पर लकड़ी का भारी क्रूस रखा जाता है। अपनी यात्रा कलवारी की ओर करते हुए आइए हम कुछ क्षण सिमोन के कार्य पर चिंतन करें, उसके हृदय की ओर देखें और यीशु की बगल में उनके कदमों का अनुसरण करें।
Anzitutto il suo gesto, che è così ambivalente. Da un lato, infatti, il cireneo viene obbligato a portare la croce.
सर्वप्रथम सिमोन के कार्य अपने में अज्ञात हैं। दूसरी ओर हम उन्हें जबरदस्ती से क्रूस ढोने के लिए बाध्य पाते हैं। उन्होंने विश्वास के साथ यीशु की मदद नहीं की, लेकिन दबाव में ऐसा किया। वहीं वे यीशु के दुखभोग में व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं। यीशु का क्रूस सिमोन का क्रूस बनता है। वह सिमोन नहीं था जो पेत्रुस कहलाता है, जिसने अपने स्वामी को हर परिस्थिति में अनुसरण करने की प्रतिज्ञा की थी। वह सिमोन उसे धोखा देकर भाग गया था, जो भी कि उसने यह कहा था, प्रभु मैं आपके संग जेल जाने और मरने के लिए भी तैयार हूँ। वह जो अभी यीशु का अनुसरण करता है वह शिष्य नहीं है, लेकिन वह सिरिनी का निवासी है। यद्यपि स्वामी ने अपनी शिक्षा में स्पष्ट रूप से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह अपना आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। गलीलिया के सिमोन ने कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सिरिनी के सिमोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह कार्य करता है। यीशु और उसके बीच कोई वार्ता नहीं होती है, कोई एक शब्द भी नहीं कहा जाता है। यीशु और उसके बीच हम लकड़ी के क्रूस को पाते हैं। यदि हम सिरिनी सिमोन के बारे में जानना चाहें कि क्या उसने यीशु के दुख भोग में उनकी सहायता की या उसने घृणा की या उसने सही अर्थ में यीशु का क्रूस ढोया या सिर्फ साधारण मदद मात्र की, तो हमें उसके हृदय के अंदर देखने की जरूरत है। जहां हम ईश्वर के हृदय को खुला पाते जो भाले से छेदित है, जहां से हमारे लिए करुणा प्रकट होती है, वहीं हम मनुष्य के हृदय को अपने में बंद पाते हैं। हम यह नहीं जानते कि सिमोन के हृदय में क्या बीती होगी। हम अपने को उनके स्थान में रखकर देखें, क्या हम अपने में क्रोध या दया, करुणा या प्रताड़ित किए जाने का अनुभव करते हैं।
Se ricordiamo che cosa ha fatto Simone per Gesù, ricordiamo pure che cosa ha fatto Gesù per Simone, come per me, per te, per ognuno di noi.
जब हम यीशु के लिए सिमोन के कार्य के बारे में सोचते हैं, तो हमें यीशु के बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हम में से प्रत्येक जन के लिए। उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई है। लकड़ी का क्रूस जिसे सिरिनी सिमोन ने ढोया, वह यीशु का क्रूस था जिसमें उन्होंने स्वयं दुनिया के पापों को ढोया। उन्होंने प्रेम के खातिर ऐसा किया। अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता में उन्होंने हमारे लिए और हमारे संग दुख उठाया। इस प्रकार अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक रूप में सिमोन मुक्ति इतिहास का अंग बनता है, जहां कोई अपरिचित और परदेशी नहीं है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि आइए हम सिमोन के पद चिन्हों का अनुसरण करें, क्योंकि वह हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि वे हर किसी के लिए हर परिस्थिति में मिलने आते हैं। जब हम पुरुषों और महिलाओं की बड़ी भीड़ को देखते हैं, जिन्हें घृणा और हिंसा कलवारी के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करती है, तो हमें याद करना चाहिए कि ईश्वर ने इस मार्ग को मुक्ति का स्थल बनाया है, क्योंकि वे स्वयं इस पर चली हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। आज भी कितने ही सिरिनी सिमोन हैं जो अपने कंधों पर ख्रीस्त के क्रूस को ढोते हैं। क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं या हम उनके चेहरे में ईश्वर को देखते हैं जो युद्ध के बोझ और बहुत सारी चीजों से वंचित हैं, बुराई के भयावह अन्याय का सामना करते हुए। हम कभी भी मसीह के क्रूस को व्यर्थ नहीं ढोते, इसके विपरीत यह हमारे लिए उसके मुक्तिदायी प्रेम में सहभागी होने का सबसे ठोस तरीका है।
Davanti alla atroce ingiustizia del male, portare la croce di Cristo non è mai vano. È la maniera più concreta di condividere il suo amore salvifico.
जब भी हम उन लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं जो अपने में आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें उठाते जो गिरे हैं, निराश लोगों को गले लगाते हैं, तो यीशु का दुख भोग करुणा में बदल जाता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस महान करुणा के चमत्कार को अनुभव करने के लिए हमें यह विचार करने की जरूरत है कि इस पुण्य सप्ताह में हम कैसे यीशु के क्रूस को ढोने में मदद करते हैं। हमें कैसे यीशु के क्रूस को ढोने की जरूरत है, यदि अपने कंधे पर नहीं तो अपने हृदय में, और न केवल हमारी क्रूस को बल्कि उन क्रूसों को भी जो हमारे अगल बगल दुखों से पीड़ित हैं, उन अनजान लोगों के जिसे उन्होंने हमारे लिए दिया है। आइए हम प्रभु के पास का रहस्य के लिए तैयारी करते हुए एक दूसरे के लिए सिरिनी सिमोन बने।
लौट के तू आ, लौट के तू आ। बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल लियोनार्डो सांद्री की अध्यक्षता में आयोजित खजूर रविवार मिसा समारोह के समापन पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में आश्चर्यजनक दौरा कर तीर्थयात्रियों को व्यक्तिगत रूप से खजूर रविवार और पवित्र सप्ताह की शुभकामनाएं दी। संत पापा ने पवित्र मिसा के अंतिम आशीर्वाद के तुरंत बाद महागिरजाघर से लगभग 10 मिनट के लिए प्रांगण में आए। संत पापा ने कहा, खुश खजूर रविवार और पवित्र सप्ताह की शुभकामनाएं, और फिर अपने व्हीलचेयर से श्रद्धालुओं के बीच गए। प्रांगण में तीर्थयात्रियों को बधाई देने के बाद संत पापा फ्रांसिस महागिरजाघर के अंदर वापस आए, जहां वे प्रेरित पेत्रुस के कब्र के सामने कुछ क्षण रुके, फिर संत पापा पियूस 10वें और संत पापा बेनेडिक्त 15वें को समर्पित स्मारक के सामने प्रार्थना किए, और संत पापा फ्रांसिस ने खजूर रविवार को देवदूत प्रार्थना संदेश में यीशु के दुख भोग के बारे में विचार किया और विश्वासियों को अपने विश्वास को पोषित करने और यीशु की तरह पिता के कृपालु और दयालु आलिंगन से घिरे होने का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा पत्रकारों को वितरित किए गए एक पाठ में संत पापा ने संत लूकस के अनुसार प्रभु के दुख भोग के वृतांत पर विचार किया, जिसमें हम एक असहाय और अपमानित यीशु को अपना क्रूस उठाए चलते हुए देखते हैं, एक बच्चे की भावनाओं और दिल के साथ जो अपने पिता की गर्दन से लिपटा हुआ था, शरीर से कमजोर लेकिन त्याग पर भरोसा करने में मजबूत, जब तक कि वह पिता की बाहों में मृत्यु में नहीं सो गया। संत पापा ने कहा, ये ऐसी भावनाएं हैं जिन पर हमें चिंतन करने और उन्हें अपना बनाने के लिए प्रार्थना पद्धति कहती है। उन्होंने कहा कि हम सभी दुखी होते हैं, चाहे वे शारीरिक हो या नैतिक, और विश्वास हमें निराशा में न पड़ने, खुद को कड़वाहट में बंद न करने, बल्कि उनका सामना करने में मदद करता है। यीशु की तरह पिता के कृपालु और दयालु आलिंगन में खुद को घिरा हुआ महसूस करने में मदद करता है। संत पापा ने कहा कि 15 अप्रैल को सूडान में संघर्ष की शुरुआत की दूसरी वर्षगांठ होगी, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों परिवारों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बच्चों और महिलाओं और कमजोर लोगों की पीड़ा को याद करते हुए, जो स्वर्ग से पुकारते हैं और हमसे कार्यवाही की भीख मांगते हैं, संत पापा ने इसमें शामिल पक्षों से अपनी अपील दोहराई, ताकि वे हिंसा समाप्त कर सकें और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ सकें तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संपर्क कर सकें, ताकि लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। संत पापा ने सद्भावना रखने वाले पुरुषों और महिलाओं से लेबनान को अपनी प्रार्थनाओं में रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें लेबनान को भी याद करना चाहिए, जहां 50 साल पहले दुखद गृह युद्ध शुरू हुआ था। ईश्वर की मदद से देश शांति और समृद्धि में रहे। संत पापा ने दुनिया भर के अन्य युद्धग्रस्त देशों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने प्रार्थना की शहीद यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार और दक्षिण सूडान में शांति आए। संत पापा ने निमोनिया से उबरने के दौरान लगातार प्रार्थना करने के लिए विश्वासियों को धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, भाइयों और बहनों, मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शारीरिक कमजोरी के इस समय में मुझे ईश्वर की निकटता, करुणा और कोमलता को और अधिक महसूस करने में मदद करते हैं। मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं आपसे उन लोगों को प्रभु को सौंपने के लिए कहता हूँ जो मेरे साथ पीड़ित हैं। उधर यरूशलेम से अपने खजूर रविवार संदेश में यरूशलेम के लैटिन प्रातिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला ने क्रिश्चियों से आग्रह किया कि वे चल रही कठिनाइयों के बीच भी विश्वास में दृढ़ रहें और घृणा का जवाब शांति से दें और विभाजन का जवाब एकता से दें। पवित्र शहर के द्वार पर उपस्थित लोगों और पूरे क्षेत्र में प्रार्थना में एकजुट सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए गाजा से नाजरेत तक, बेतलहम से जेनिन तक, जॉर्डन से साइप्रस के श्रद्धालुओं सहित कार्डिनल पिज्जाबाला के शब्दों ने विशेष रूप से यरूशलेम के ख्रिस्तीय समुदाय को सम्मानित किया जिन्हें उन्होंने पुनरुत्थान के शहर में विश्वास की लौ के संरक्षक के रूप में वर्णित किया। हम जानते हैं कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन हम आज यहाँ केवल कठिनाई के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पूरी ताकत के साथ यह घोषणा करने के लिए आए हैं कि हम डरते नहीं हैं। हम प्रकाश, पुनरुत्थान और जीवन के बच्चे हैं। हम ऐसे प्रेम में विश्वास करते हैं जो सब पर विजय प्राप्त करता है। कार्डिनल पिज्जाबाला विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि दुख दुनिया के लिए ईश्वर का अंतिम शब्द नहीं है। ईश्वर का अंतिम शब्द पुनर्जीवन है और हम एक बार फिर शक्ति के साथ, प्रेम के साथ और अधिक विश्वास के साथ इसे पुष्ट करने के लिए यहाँ हैं। उन्होंने कहा, कोई भी हमें यरूशलेम के प्रति हमारे प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अपने संदेश को समाप्त करते हुए कार्डिनल पिज्जाबाला ने विश्वासियों से हिम्मत न हारने का आह्वान किया। उधर यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास ने वाटिकन न्यूज से क्रूस मार्ग धर्म विधि के गहरे अर्थ के बारे में बातें की, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने 11 अप्रैल को कीव में पवित्र सप्ताह से पहले पूर्व कैदियों और युद्ध विकलांगों की भागीदारी के साथ की थी। कैदियों के लिए क्रूस का मार्ग और यूक्रेन में शांति की वापसी शीर्षक वाले इस धर्म विधि में युद्ध के पूर्व कैदियों, युद्ध में विकलांग हुए लोगों, शोक संतप्त रिश्तेदारों और लापता प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे लोगों ने भाग लिया और विभिन्न ख्रिस्तीय समुदायों, ग्रीक कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत ने इस अनुष्ठान की अध्यक्षता की और वाटिकन न्यूज के साथ इस पहल के महत्व पर विचार व्यक्त किया, जिसे उन्होंने भावनात्मक रूप से अभिभूत करने वाला और आध्यात्मिक रूप से सार्थक बताया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।